ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम है महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। श्लोक संख्या 9। एवं निरोक्तम क्षितिसंदवृत्तम असन्निधानात् परमाणवो ये अवेन्द्रिया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं निरोक्तं क्षितिसंदवृत्तम् असन्निधानात् परमाणवो ये अवेन्द्रिया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं निरुक्तं क्षितिसंदवृत्तम् असन्निधानात् परमाणवो ये अवेन्द्रिया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। शब्दार्थ बोलिए। एवं इस प्रकार निरुक्तम मिथ्या वर्णन किया गया। क्षिति शब्द क्षिति क्षिति अर्थात पृथ्वी शब्द, वृत्तम उपस्थिति, असत असत्य, निधानात विलीन होने से, परम अणवः अत्यंत सूक्ष्म कण, ये जो सब, अविद्या अविद्या अर्थात अज्ञान से, मनसा मन से, कल्पिताः कल्पना किए हुए, ते वे येषां जिनका, समूहेन समूह के द्वारा, कृतः बनाया हुआ, विशेषः विशेष। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। कोई यह कह सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, तथापि यह ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी, किंतु ये कण अस्थाई हैं। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं। यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं, यह सत्य नहीं है कि संसार में पाई जाने वाली विविधता यानी किसमें परमाणुओं के उलट पुलट या विविध संयोगों का प्रतिफल है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक के शब्दों को फिर से समझेंगे। श्लोक के शब्दों में जड़ भरत राजा रहुगण से कह रहे हैं, एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम। किस प्रकार से जो क्षिति जो पृथ्वी शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये मिथ्या है, इसका जो प्रयोग है वो मिथ्या है। क्यों? असन्निधानात् परमाणु, क्योंकि अगर इसका जब लय होता है, पृथ्वी अगर समाप्त होती है तो परमाणु के रूप में वो बन जाती है, सब परमाणु बन जाते हैं। अगर पृथ्वी समाप्त होती है तो परमाणु बन जाते हैं, तो फिर पृथ्वी शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। अविद्या मनसा कल्पितास्ते, लेकिन ये भी जो है परमाणु अज्ञान के कारण ही कल्पना हुई है, परमाणुओं की जो कल्पना है अज्ञान के कारण ही हुई है। ये साम समूह ने कृतो विशेषा, कि जिनके समूह से ये विशेष पृथ्वी बनी, तो ये अज्ञान के कारण परमाणुओं की कल्पना हुई है। जो दार्शनिकों ने कल्पना की है कि पूरी सृष्टि में जो है जो कारण है वो एक परमाणु है, तो उन्होंने कल्पना की कि एक इतना छोटा कण है जो विभाजित नहीं हो सकता, परमाणु अविभाज्य है। तो पहले विज्ञान में डाल्टन का परमाणुवाद चलता था, तो डाल्टन ने जो है परमाणु की कल्पना की कि एक इतना छोटा कण है जैसे छोटा कुछ हो नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और वो जो है परमाणुओं से ही जो है हर चीज बनी, उन्होंने ये जो है कल्पना की, अज्ञान से कल्पना की। तो यहाँ पर पहले से श्रीमद् भागवत में पहले से बताया गया कि अज्ञान है। अब उसका खंडन तो अभी हुआ कि जब देखा गया ये परमाणु भी टूट रहा है, परमाणु के अंदर भी जो है कुछ और छोटे छोटे कण हैं, उसको भी तोड़ा जा सकता है, तो ये तो बाद में खोज हुई। श्रीमद् भागवत में पहले से ही बताया गया है कि अज्ञान से ही ये लोगों ने कल्पना की है कि परमाणु एक छोटा सा कोई कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसी से ही पूरी पृथ्वी बनी है, हर चीज बनी है परमाणु से बनी है ना, अज्ञान है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो जड़ हो और जिसके अंदर भगवान ना हो, तो ब्रह्म सिद्धांत बताया गया है, अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी, कि भगवान बड़े से बड़े हैं तो पूरे ब्रह्मांड में उनका शरीर है, और छोटे से छोटे परमाणु के अंदर भी वे हैं, तो गोविंद आदि पुरुष है ना, तो वो भगवान है जो कि चेतन है, सच्चित आनंद जो भगवान है वो परमाणु के अंदर भी हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि नहीं और कोई छोटा कण हो सकता है जो जड़ है और वो सबसे छोटा है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जड़ वस्तु हो और छोटी हो, इतनी छोटी हो कि जो टूट ना सके, जिसके अंदर भगवान ना जा सके। तो भगवान जो है इतने सूक्ष्म, इतने छोटे से छोटे हैं कि वो भगवान जो हर चीज के अंदर व्याप्त है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे तभी हम सुनेंगे। फिर इसमें कहा है ये साम समूह ने कृतो विशेषा, अज्ञान से इस प्रकार की कल्पना की गई कि ये पृथ्वी जो है परमाणुओं से बनी है, तो जब वही पृथ्वी जो है जब नष्ट होती है तो परमाणु के रूप में जो है बन जाती है, और ये परमाणु जब इकट्ठे होते हैं, समूह बनता है परमाणुओं का, तो पृथ्वी बन जाती है। तो सृष्टि का जो है वो यही कारण मानते हैं कि परमाणु ही सृष्टि का कारण है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जो परमाणुवाद के समर्थक हैं उनका विचार है कि परमाणुओं के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं। तो अभी परमाणु की जितनी खोज हुई है उसके अनुसार प्रभुपाद बता रहे हैं कि परमाणु को भी जो है उन्होंने अध्ययन कर लिया, उसके अंदर भी नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई ईश्वर है जो कि इन सब चीजों में नियंत्रण कर रहा है ना। तो उनके पास जो है इतना विचार नहीं होता कि कोई व्यक्ति तो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन की गति को जिसने निश्चित किया है। कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं परमाणु के अंदर, तो उनके पास जो है इतना विचार नहीं है। जबकि सामान्य था ये विचार हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए कि परमाणु की अगर संरचना इस प्रकार की है तो किसने बनाई है परमाणु की संरचना, है ना। तो भगवान है परमाणु के अंदर, तो उनका जो है पूरा नियंत्रण है, परमाणु के ऊपर पूरा नियंत्रण है। और वो लोग अगर नहीं देख सकते हैं बिना भक्ति के, वो अगर भगवान को नहीं देख सकते हैं परमाणु के अंदर, तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई नियंत्रण हो, ये सब जड़ वस्तु है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि परमाणुवाद के जो समर्थक हैं उनका विचार है कि परमाणुओं के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं, किंतु वैज्ञानिकगण परमाणु के ही अस्तित्व का कारण खोजने में असमर्थ हैं। उनके पास जो है उत्तर ही नहीं है। अगर उन्होंने परमाणु की संरचना खोज ली है तो अगर कोई पूछे कि ये संरचना किसने बनाई तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है, है? तो प्रॉपर लिख रहे हैं कि किंतु वैज्ञानिकगण परमाणु के ही अस्तित्व का कारण खोजने में असमर्थ हैं। तो वो कहते हैं परमाणु ही कारण है, है ना। ऐसी दशा में प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी दशा में हम ये नहीं कह सकते कि परमाणु ही ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है। ऐसे सिद्धांत अज्ञानी लोग प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार इस विराट जगत का असली कारण परमेश्वर है। जन्मादिश्यतः वो समस्त सृष्टि का मूल कारण है। तो ये हमारे शास्त्र में जो पहले से लिखा हुआ है वो अकाट्य है, वो जो है निश्चित है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। वो अनादिकाल से हमारे शास्त्र जो बात बता रहे हैं वो अनंत काल तक वही चलती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के जो निष्कर्ष हैं हमेशा बदलते रहते हैं, उनके प्रयोग जो है अलग 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 होते हैं, अलग अलग निष्कर्ष होते हैं। और पहले जो उन्होंने सिद्धांत खोजा उसको फिर काटते हैं, फिर दूसरा सिद्धांत निकालते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मूल कारण है, जो मूल कारण है वो कौन है, परमेश्वर। वो समस्त सृष्टि का मूल कारण है, जैसा कि भगवद गीता 10:8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कृष्ण ही मूल कारण है। तो जन्मादिश्यतः ये श्रीमद् भागवत का सबसे पहला वाक्य है, ब्रह्म सूत्र का भी पहला वाक्य है, श्रीमद् भागवत भी वहीं से शुरू होता है, जन्मादिश्यतः। और गीता में भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभु। तो प्रभुपाद इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में बार बार यही बात बताई गई है कि संपूर्ण सृष्टि का जो कारण है वो भगवान है, कृष्ण है। आगे कृष्ण ही मूल कारण है। सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्म संहिता में सर्व कारण कारणम, ईश्वरः परमः कृष्णः सर्व कारण कारणम। अगर आप परमाणु को भी कारण बनाते हैं तो उसका भी कारण कृष्ण है। तो कृष्ण का कारण कोई नहीं है, और कृष्ण ही सबके कारण है, सब कारणों के कारण कृष्ण है, है ना। तो इस बात को जब तक ना समझे तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। सर्व कारण कारणम, वो समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण ही परमाणु अथवा भौतिक ऊर्जा शक्ति के कारण है। तो परमाणु के कारण कृष्ण है और भौतिक ऊर्जा शक्ति के भी कारण है। तो अभी आजकल वो परमाणु से भी जो ऊर्जा है उत्पन्न करते हैं, परमाणु से जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन है उनको जो है किसी प्रकार से टकरा करके और उसकी जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है, उसको ऊर्जा में बदलते हैं। और आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया E=MC², जिसका मतलब है कि बहुत थोड़ी भार की अगर कमी हो जाए पदार्थ में तो उससे असीमित ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये उन्होंने जो है एक सूत्र दिया है ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी का मतलब प्रकाश की गति, प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग 186,000 मील प्रति सेकंड है। और एम का मतलब मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा में प्रकाश की जो प्रकाश का वेग है उसका जो है गुणा कर दिया जाए, दो बार गुणा कर दिया जाए तो वो इतनी ऊर्जा पैदा होगी, इतनी शक्ति पैदा होगी, है ना। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसी से ही वो नाभिकी बम बना रहे हैं, है ना, इतनी ऊर्जा बना रहे हैं, है ना। लेकिन ऊर्जा के भी कारण कृष्ण है, पदार्थ के भी कारण कृष्ण है, प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवद्गीता 7:4, भूमि रापूर्ण लो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। परम कारण भगवान है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, मेरी प्रकृति 8 प्रकार से विभक्त है, तो भगवान बता रहे हैं। तो ये जो निष्कर्ष हैं जो भगवद्गीता के हैं, ये जो है पूर्ण निष्कर्ष हैं। भगवद्गीता का ये 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग भी कहलाता है, तो इसमें पूर्ण विज्ञान है। भगवान ये भी बताते हैं कि ज्ञानम देहम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यस ज्ञात्वा नेह भूयोन अन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। किस ज्ञान को मैं विज्ञान के साथ संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जान करके और कुछ ज्ञान जानना शेष नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है जो वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं, तो उनकी खोज में भी बहुत कमियाँ हैं, और वे नहीं समझ पा रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर कृष्ण है, जो कि सबसे छोटे से छोटे चीज में भी प्रवेश करके कृष्ण धारण कर रहे हैं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मुझसे परतर यानी सूक्ष्म, परतर का दूसरा अर्थ ये भी है कि मुझसे सूक्ष्म और कुछ नहीं है। किंचित् अस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय, मुझ में ही सब कुछ प्रोत है, जैसे धागे में मणि है, जैसे कि ये माला है, तो इसमें धागा नहीं दिखाई पड़ रहा है, जितने भी फूल हैं ये सब कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से धागे के कारण, लेकिन धागा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से कृष्ण इतने सूक्ष्म हैं, हर चीज में कृष्ण इसी प्रकार से व्याप्त हैं, यानी ओत ओत हैं, जैसे धागा प्रोत होता है, धागे में पिरोया हुआ है हर चीज, उसी प्रकार से कृष्ण में हर चीज पिरोई हुई है। तो कृष्ण को आप नहीं समझ सकते, बिना भक्ति के आप कृष्ण को नहीं समझ सकते, है ना। तो ये विज्ञान जो है ये भक्ति का विज्ञान है, बिना भक्ति के आप ये नहीं समझ सकते। परमाणु को जैसे आपने तोड़ लिया, परमाणु का अध्ययन कर लिया कि इसके अंदर ये है इसके अंदर ये है, तो जड़ वस्तु है। भगवान का आप इस प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो भगवान आपके पकड़ में नहीं आएंगे इस तरह से कि आप भगवान को पकड़ के आप अध्ययन कर लो। करताल को पकड़ के हमने इसका अध्ययन कर लिया कितना वजन है कितना है, तो आप भगवान को पकड़ करके इस तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। भगवान को तो आप समर्पण के द्वारा ही आप जान सकते हैं, और भगवान आपको जनाएंगे, आप समर्पण होंगे समर्पित होंगे, क्योंकि भगवान तो चेतन वस्तु है। तो जैसे आपको भी जो है अगर मैं पकड़ूं देखूं कि भाई कैसे आपका रूप रंग है, तो आप झटक देंगे कि क्या कर रहे हो। तो ऐसे भगवान का अध्ययन थोड़ी कोई कर सकता है इस तरह से कि भी छू करके देख करके आप जो है इनका परीक्षण करो कि ऐसे हैं भगवान, तो भगवान नहीं आएंगे आपकी पकड़ में, इंद्रियों से परे। तो भगवान जब तक आपके वशीभूत नहीं होते हैं तब तक आप उनका अध्ययन नहीं कर सकते। इसको तो मैं कंट्रोल करता हूँ तो अध्ययन कर लेता हूँ, तो कोई भी चीज़ हुई जड़ वस्तु है उसको मैं कंट्रोल करके इसका अध्ययन करता हूँ। तो भगवान को आप अगर जानना चाहते हो तो भक्ति के द्वारा ही कंट्रोल में आएंगे, और भक्ति का मतलब पूर्ण समर्पण, आप सेवा पूर्ण समर्पण करो, सेवा करो, तभी भगवान को जो आप समझ सकते हैं जान सकते हैं, और कोई दूसरी विधि नहीं है। तो वो जो है भगवद्गीता की विधि है जिसमें ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम कुछ कथा क्रम में आएंगे कि कथा का क्रम कैसा है, क्योंकि प्रभुपाद जो तात्पर्य में देते हैं वो बड़ी गहरी बातें होती हैं, लेकिन अब कथा का जो क्रम है उस पर हम विचार करें तो एक ये भी विधि है समझने की, अध्ययन करने की। तो ये जो प्रसंग चल रहा है ये महाराज रघुगण का जड़ भरत के साथ संवाद है। तो दसवें अध्याय में ये शुरू हुआ था, ये जो प्रसंग है ये दसवें अध्याय से शुरू हुआ था। तो दसवें अध्याय में ये बताया गया है कि राजा रघुगण सिंधु सौवीर देश का राजा है और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल आश्रम जा रहा है, कपिल देव के आश्रम में जा रहा है। तो सिंधु सौवीर तो कहाँ, पंजाब में होगा, और कपिल भगवान का आश्रम कहाँ पर है, गंगा सागर है ना, तो कहाँ पश्चिम दिशा से और कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो राजा तो वहाँ पश्चिम दिशा का है और जा रहा है पूर्व दिशा में, है ना, तो अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल चुका है ना, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है तो उसको विधि भी कुछ पता है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। तो वो जो है अपनी सेना साथ लेके नहीं जा रहा है, किसी आप महात्मा के पास आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो अपने सेना साथ लेके नहीं जाएंगे, तो इतना उसको शिष्टाचार पता है कि वो अपनी सेना साथ लेके नहीं जा रहा है। और जहाँ तक हथियारों की बात है तो हथियार भी नहीं लेके जा रहा है, बिना हथियार के जा रहा है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा उसका जो दोष है वो ये है कि वो पालकी में बैठ के जा रहा है। पालकी में बैठ के क्यों जा रहा है, जब राजा है और जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाए तो फिर उसको पैदल ही जाना चाहिए, पालकी में बैठ के क्यों जा रहा है। और फिर पालकी में अगर बैठ के जाए तो ठीक है, अपने राज्य की सीमा तक वो पालकी में बैठ सकता है, राज्य की सीमा से बाहर जाए तो उसको फिर जो है वैसे जाना चाहिए, पैरों से चल करके, पैदल चल करके जाना चाहिए। लेकिन वो शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहा है, जैसे कि दुर्योधन था, तो दुर्योधन के अंदर शिष्टाचार नहीं है। गीता में बताया गया है कि आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत, आचार्य के पास जाए, आचार्य के पास गया वो दुर्योधन तो राजा वचनम अब्रवीत, राजा के रूप में गया और वचनम अब्रवीत, वचन बोला यानी आज्ञा के रूप में जो है वचन बोला। तो दुर्योधन का इस प्रकार का भाव है ना, तो गलत तरीका है। आचार्य के पास जाए तो राजा के रूप में जाए। और गीता के उपदेश के बाद महाभारत में जो वर्णन आता है कि क्या घटना हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि गीता का जब भगवान ने उपदेश दे दिया, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, उस समय युद्ध शुरू नहीं हुआ। उस समय युधिष्ठिर महाराज अपनी सेना से बाहर निकले और शत्रु की सेना में जा रहे हैं, राजा के चिन्ह भी छोड़ दिए, कुछ हथियार भी सब छोड़ दिए हैं और पैदल जो है शत्रु की सेना में जा रहे हैं। और सब लोग सोच रहे हैं क्या बात है, युधिष्ठिर शायद भयभीत हो गए हैं क्या, तो कुछ उल्टी उल्टी बातें भी बहुत लोग बोल रहे हैं। युधिष्ठिर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अर्जुन भी पूछ रहे हैं आप हमें आज्ञा दीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें, कुछ नहीं बोल रहे हैं। भीमसेन कि मैं आज्ञा दे रहे हैं, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, शत्रु की सेना में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कृष्ण भी पीछे पीछे चल रहे हैं, कृष्ण जानते हैं, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मैं जानता हूँ ये क्यों जा रहे हैं, ये शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। भीष्म द्रोण से युद्ध की आज्ञा मांग रहे हैं, युद्ध की आज्ञा मांग रहे हैं, उनको प्रणाम करेंगे। तो युधिष्ठिर ने फिर यही किया, भीष्म के पास गए, उनको प्रणाम किया, उनके परिक्रमा की और उनसे जो है आज्ञा मांगी कि आप मुझे आपसे युद्ध करना होगा और मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। और वे ऐसे महानुभाव हैं, इतने महात्मा हैं कि उन्होंने कहा अगर तुम नहीं आए होते तो मैं पराजय का श्राप दे दिया होता, लेकिन तुम आए हो तो विजय का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। तो भीष्म देव ने विजय का आशीर्वाद दिया, द्रोण ने विजय का आशीर्वाद दिया, कृपाचार्य ने विजय का आशीर्वाद दिया, शल्य जो मामा है उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया और काफ़ी मतलब बातें हुई, चर्चा हुई इस विषय में। इन कहने का मतलब यह है कि अगर आप बड़े लोगों के पास जाए हैं तो फिर अपने राजा के चिन्ह धारण करके नहीं जाना। तो जो रहुगण राजा है तो उसे शिष्टाचार कुछ पता है, इसलिए वो सेना साथ लेके तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो पालकी में बैठ करके जा रहा है और अपनी राजा पना का जो भाव है वो उसके अंदर बना हुआ है। और पालकी में जा करके वो जो है अपने राज्य के बाहर भी किसी को भी जो है पालकी में जोड़ लेता है कि मैं राजा हूं, और उनको कुछ पुरस्कार भी नहीं देगा, केवल राजा पने का भाव दिखाने के लिए कि तुम जो है मेरी पालकी को ढो क्योंकि मैं राजा हूं। तो अब तो यहां उसको तत्व विचार करना चाहिए, उसको जो है अब तत्व विचार करना चाहिए कि यहां जो है कोई राजा नहीं है, तुम खुद भी इसी विधि से जब जा रहे हो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, राजा के जो हथियार हैं वो नहीं तुमने लिए हैं, तुमने सेना अपने साथ में नहीं ली है, अब तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तो अब राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं है, अब तुम कहाँ के राजा हुए, अब तुम्हारे में राजा का भाव क्यों है ना। तो उसके अंदर चूंकि राजा का भाव है ना, तो वो जो है जब और ये जो रास्ता है वो पैदल चलने का है तो बहुत लंबा रास्ता है। आप सोचिए भारत के जो है पश्चिम कोने से वो पूरब के कोने तक चलना है ना, कितना लंबा रास्ता है, और पैदल चलना है, वो पालकी में बैठ के चलेगा तो चार आदमी जो है पैदल चलेंगे तो कितने दिन लगेंगे है ना। तो कोई आदमी जो है कम पड़ गया, कोई आदमी जो है अगर मान लो गिर गया, बीमार हो गया, तो उसको छोड़ करके कोई भी आदमी मिले तो उसको लगा लिया, चलो मेरी पालकी ढो, गलत तरीका है। राजा की कोई थोड़ी सेवा करे तो उसको कितना पुरस्कार मिलना चाहिए, आप सोचिए। लेकिन यहाँ पर राजा जबरदस्ती किसी को बलपूर्वक अपने जो है पालकी में ढोए और जा रहा है कहाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है, है ना। तो भरत महाराज जो है, जड़ भरत जो है इस समय है, वो पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन वो आत्मज्ञान में बहुत ऊंचे हैं। तो उनको भी जो है पालकी में जोड़ लिया, पालकी में लगा लिया। और चूंकि भरत महाराज जो जड़ भरत के रूप में, वो जो है जब चल रहे हैं तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं, चींटियां हैं, तो पैर के नीचे ना पड़े तो वो जो है रुक जाते हैं, फिर कभी लंबा पैर रखते हैं, कभी छोटा पैर रखते हैं, तो इस तरह पालकी का जो संतुलन है वो खराब हो रहा है। और जब रहुगण पूछता है कि तुम लोग ऐसे पालकी क्यों ढो रहे हो, तो तीनों जो कहार थे उन्होंने बताया कि ये जो नया आदमी आया है तो ये ठीक से नहीं चल रहा है, इस कारण से पालकी जो है ऊंची नीची हो रही है, धक्का लग रहा है। तो उसने इनको जो है कुछ अपशब्द कहे, और फिर भी ये नहीं चल रहे हैं तो फिर उसने और ज़्यादा जो है कठोर शब्द बोले, है ना। तो जब बहुत कठोर शब्द बोले तो जड़ भरत जो है पहली बार अपने जीवन में पहली बार उसको उपदेश देते हैं। तो उपदेश नहीं देते हैं, वो उत्तर ही देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के आधार पर उत्तर देते हैं कि तत्व, अब तुम जो है तत्व को समझो कि तुम अपने को राजा कैसे समझ रहे हो, अपने को अब राजा क्यों समझ रहे हो, अभी राजा के तुम्हारे पास कोई चिन्ह नहीं है, तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, यहाँ पर अब राजा अपने को समझने की आवश्यकता क्या है। और वो कपिल देव के आश्रम में जा रहा था तो ये बात बताई गई है, तो दसवें अध्याय के पहले श्लोक में प्रभुपाद भी बता रहे हैं, कपिल आश्रम की ओर जा रहा था वो, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। और जब उसने जड़ भरत के ऐसे वचन सुने तो उसको संदेह हुआ कि शायद ये कपिल देव हैं क्या, क्योंकि उसने देखा नहीं था, कपिल भगवान को देखा नहीं था। तो उन दिनों तो सब ये सब नहीं होता था ना, जैसे आजकल ये सब होता है, इंटरनेट है, सब कुछ देख लेते हैं, फेसबुक में देख लेते हैं, है ना। तो किसी को भी आप देख सकते हैं, दुनिया की किसी भी कोने में हो आप फेसबुक में देख लेंगे, इंटरनेट में देख लेंगे। तो पहले तो सब कुछ नहीं था, तो उसने सुना था कपिल भगवान जो है ये ज्ञान के अवतार हैं, संपूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान जो है के मूर्तिमान रूप हैं, मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो इनको ही वो जो है कपिल भगवान, कुछ संदेह हुआ कि शायद कपिल भगवान तो नहीं है। तो उसने क्या कहा, दसवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में उसने बहुत भयभीत होकर के मतलब ये बात कही कि कस्मात् क्षेमाय नश्चेतसि नोद शुक्लः, कि कहीं आप शुक्ल तो नहीं हैं जो कि हमारे कल्याण के लिए यहाँ विचरण कर रहे हैं। नोद शुक्ला, तो शुक्ल कपिल भगवान को शुक्ल कहा जाता है। सतयुग में भगवान का वर्ण शुक्ल होता है, शुक्लो रक्तस तथा पीत, तो शुक्ल वर्ण जो है भगवान का सतयुग में होता है, तो कपिल भगवान जो है शुक्ल भी कहलाते हैं। तो कहीं आप शुक्ल तो नहीं है, है ना। तो यहाँ शब्दार्थ में प्रभुपाद ब्रैकेट में लिखते हैं कपिल देव, लेकिन चूंकि प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं शिक्षा के लिए, इसलिए इस बात को प्रभुपाद छोड़ करके तात्पर्य दे रहे हैं। लेकिन यहाँ संकेत यही मिलता है कि रहुगण को जो है कुछ संदेह हो गया कि जिन कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ, शायद वही कपिल भगवान तो नहीं है, है ना। तो उसने ये बात बोली कि आप गुण विचरण करते हैं क्षेम आए ना हम सबके लाभ के लिए, है ना। तो फिर 19वें श्लोक में भी उसने क्या कहा, उन्नीसवें श्लोक में भी कहा कि साक्षात हरिम ज्ञान कलावतीर्णम, कि आप साक्षात हरि जो ज्ञान की साक्षात कला है आप अवतीर्ण हुए हैं। तो यहाँ भी उसका भाव यही है कि शायद आप वही तो नहीं है, वो पूछ रहा है कि कहीं आप वही तो नहीं है, कपिल भगवान तो नहीं है। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में चूंकि इस बात को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में शिक्षा उनकी जो है शिक्षा पर जो है विशेष प्रभुपाद शिक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इसलिए इस बात को नहीं ले रहे हैं। लेकिन कथा में जो है ये समझ में आती है कि वो कपिल भगवान शायद समझ रहा है। और भरत जड़ भरत जो है फिर आगे चलकर ये श्लोक संख्या 14 में बताएंगे, ये तो 19वां श्लोक है, तो इसे अध्याय के श्लोक संख्या 14 में बताएंगे कि मैं कपिल भगवान नहीं हूँ, तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं नहीं हूँ, अहम पुरा भरतो नाम राजा, कि मैं पहले भरत नाम का राजा था। तो भरत महाराज भी जो है साक्षात भगवान के पुत्र हैं, ऋषभदेव के पुत्र हैं, तो उनका भी जो है बहुत महत्व है। लेकिन कपिल भगवान से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि मैं भरत नाम का राजा हूँ, और मैं फिर उस जन्म से मृग का मैंने शरीर प्राप्त कर लिया था, और फिर मृग के शरीर से फिर मैं अब इस शरीर में आया हूँ। तो वो अपना परिचय दे रहे हैं और मुझे सब घटनाएं याद हैं, पिछले जन्म की घटनाएं, पिछले से पिछले जन्म की घटनाएं सब मुझे याद हैं। तो वो जो है मतलब इस तरह से बता रहे हैं भरत महाराज। तो अब जो है रहुगण को अभी तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन अब उसकी चिंता एक दूसरी पैदा हो गई कि उसने जो कितने कठोर शब्द बोले हैं तो उसका तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इसलिए अब वो जो है उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझको ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसके द्वारा मेरा जो अभिमान है वो दूर हो जाए। तो आप मुझे डांटिए, कठोर शब्दों से आप मुझे डांटिए और मुझ पर शासन कीजिए जिससे मैं अपराध से छूटूं, है ना। तो इस प्रकार से दसवें अध्याय का 24वां श्लोक उसमें वो कहता है, दसवें अध्याय के 24वें श्लोक में कहता है, है? कि तन्मे भवान नर देवाभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य, आप तो हैं सत्तम, सत का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है, और सत्तर जो ज्यादा श्रेष्ठ, और सत्तम सबसे श्रेष्ठ। तो आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं इस पृथ्वी में, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आप ज्ञान की निधि हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, तो आप सत्तम हैं। सत्संग होता है सत व्यक्ति का संग करना, और सत्तर और बड़ा जो सत होता है, और सबसे ज्यादा सत वो क्या है, सत्तम। तो आज सत्तम का मैंने क्या हुआ, तुच्छी कृत है, मैंने आपको तुच्छ कर दिया, मैंने आपको तुच्छ कर दिया। क्यों, अभिमान मदेन, अभिमान के मद से, अभिमान किस चीज का है? नरदेव अभिमान कि मैं राजा हूं, इस अभिमान के मद से मैंने आपको तुच्छ बनाया। कृषिष्ठ मैत्री दृश्य आर्त बंधो, तो मैं आर्त हूं, अब मैं बहुत भयभीत हूं, मैं बहुत कष्ट में पड़ गया हूं, और आप आर्त के बंधु हैं, तो आप क्या करिए? यथा तरे सन अब ध्यान आहा। तो सब पुरुष का जो अपमान का जो जो अपराध है वो किस जिस प्रकार से मैं तर जाऊं, उससे उससे छूट जाऊं, तो ऐसी आप मेरे ऊपर दृष्टि डालिए, ऐसी कृपा दृष्टि डालिए। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य बहुत अच्छा बताते हैं कि मतलब वैष्णवों के अपराध से हमें कैसे बचना चाहिए और कितना डरना चाहिए। तो ये उसका गुण है, राजा रघुकर्ण का गुण है कि वो बहुत भयभीत, बहुत चिंतित हो रहा है, हैं कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि ये अभिमान मेरा दूर हो जाए, मेरे अंदर वो अभिमान जो बना हुआ है। तो फिर 11वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें जड़ भरत उसको उसी प्रकार से उपदेश देते हैं, शुरू में ही उसको कठोरता से उसको जो है उपदेश देते हैं। जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को कठोरता से उपदेश दिया, जब अर्जुन ने अर्जुन की समस्या थी मोह की कि अपने सज्जनों के प्रति मोह है, और उसमें कायरता, उनके अंदर कायरता आ गई, अब युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो कायरता का दोष आ गया। तो अर्जुन ने भी कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शरण लेता हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। और यहाँ रघुगण की जो समस्या है वो अभिमान का एक ऐसा दोष आ गया है कि उसने जो है इतने बड़े महात्मा का अपमान कर दिया है, तो इसकी चिंता में अब वो भी उसी प्रकार से कह रहा है कि आप मुझे उपदेश दीजिए। तो जैसे भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को कठोर शब्दों में, उसी प्रकार से कठोर शब्दों में इन्होंने शुरू किया। अध्याय 11, अध्याय 11 का पहला जो श्लोक है वो क्या कहते हैं? उसी प्रकार से जैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अकोविदा कोविद वाद वादान वतसी, तुम अकोविद हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, और कोविद वाद वादान वतसी, तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, बिल्कुल उसी प्रकार से नाति विदाम वरिष्ठा, जो श्रेष्ठ वरिष्ठ लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं, तत्वावमर्शेन, तत्व के अनुसार जो है इस तरह की बातें करते नहीं, जो तत्व को जानने वाले हैं इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं प्रज्ञावादान से भाष से कि तुम प्रज्ञावाद प्रज्ञावादियों की तरह बात कर रहे हो, और यहाँ पर वो कहते हैं कोविद वाद वादान वदसी, है ना, तो उसी प्रकार के शब्द हैं, कोविद वाद वादान वदसी है? और भगवान कहते हैं अर्जुन से प्रज्ञावादान च भाष से कि तुम बात तो करते हो ज्ञानियों की तरह है, लेकिन तो वो मूर्ख है ना, तो कठोर वचन से उपदेश दिया। तो ये जो है रक्षा, इस प्रकार से रक्षा होती है, जब जो साधु हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, कठोर वचनों से अज्ञान को काटते हैं तो व्यक्ति की जो है बड़ी रक्षा होती है। और उसने यही कहा था कि मेरे अज्ञान को आप काटिए, है ना, तो उन्होंने यही कहा। अकोविदा अनुभवहीन, तुम जो है अनुभवहीन हो। फिर अध्याय 12 का श्लोक संख्या 2 है, इसमें उसने क्या कहा? ये तो श्लोक संख्या 9 है, दूसरे श्लोक में रघुगण कहता है ज्वर आमय आर्तस्य यथा गदम, कि जैसे ज्वर हो, बुखार हो, उससे कोई व्यक्ति जो है अगर बड़ा कष्ट पा रहा है तो उसको जो दवाई है निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभा, तो जो दवाई है वो अमृत दवाई है या अमृत है जैसे होती है, उसी प्रकार से आपकी जो बातें हैं मुझे मेरे अभिमान को दूर करने के लिए औषधि और अमृत की तरह लग रही हैं। रघुवर ने यह कहा कि जिस प्रकार से जो ज्वर से पीड़ित है तो उसको जो दवाई है वो अमृत की तरह लगती है, उसी प्रकार से आपकी जो कड़वे वचन है तो वो कड़वी दवाई की तरह है और मेरे लिए अमृत का काम कर रही है, उसने कहा। और क्या कहा कि कुदेहमान अहि वितस्त दृष्टे, कि कुदेहमान ये जो मेरा गंदा शरीर है, शरीर तो सबका गंदा है, इस शरीर तो इस शरीर में क्या है, मल मूत्र सब अशुद्ध चीजें हैं, इस गंदे शरीर में मेरा अभिमान हो गया है क्या राजापने का। अब तो राजा का मेरे पास कोई चिन्ह नहीं है, अब तो ये गंदा शरीर ही केवल है और इसी में भी मेरे अंदर अभिमान हुआ है राजा पने का कि मैं राजा हूं। को देह मान अहि वितष्ट दृष्टे ब्रह्मन वचस्ति अमृतम औषधम वे, तो मेरी बुद्धि इस कारण से बड़ा कष्ट पा रही है, ये बुद्धि से ही कष्ट मिल रहा है। राजा रघुगण को इसलिए उसकी बुद्धि में बड़ा कष्ट हो रहा था क्योंकि वो देख रहा है कि मैं राजा हूं और ये व्यक्ति जो है ठीक से चलता क्यों नहीं है। तो इससे उसने कठोर वचन बोले क्योंकि उसको बुद्धि में बड़ा कष्ट मिल रहा था, है ना। लेकिन अगर बुद्धि और बुद्धि दोषित कैसे है, क्योंकि वो जो विष है राजा पने का जो विष है उसकी बुद्धि में आ गया है, इस कारण से उसकी बुद्धि को बड़ा कष्ट मिल रहा है। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध हो जाए तो गीता में भगवान क्या कहते हैं कि सुखम आत्यंतिकम या तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है बुद्धि के द्वारा। तो मेरी बुद्धि चूंकि राजापन के अभिमान से दूषित है इसलिए बड़ा कष्ट पा रही है। तो आप जो है अपने वचनों के द्वारा वो आपके जो वचन हैं चाहे कड़वे वचन क्यों ना हो वो अमृत की तरह हैं, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। तो राजा रघुगण इस प्रकार से बोल रहा है कि ब्रह्मन वचस्ते अमृतम औषधम वे, तो आपके जो वचन हैं ये मेरे लिए अमृत और औषधि का काम कर रहे हैं। फिर इस श्लोक संख्या 3 में रघुगण क्या कह रहे हैं, जो और संशय हैं जिनका मम संशयार्थम प्रक्षामे पश्चात, कि मैं मेरे जो और संशय हैं जिनको लेकर के मैं जा रहा हूं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनको तो मैं बाद में पूछूंगा। अभी तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं अध्यात्म योग इस प्रकार से पूछ रहा हूं कि मेरा आप अभिमान दूर करिए कि मेरे अंदर जो अभिमान आ रहा है, क्या अभिमान आ रहा है कि मैं राजा हूं, राजा पने का जो अभिमान आ रहा है ये आप मेरा दूर करिए तो तभी ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आपके अंदर अभिमान है कि आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप बहुत है, तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे पानी नीचे की ओर प्रवाहित होता है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पानी नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञान भी जो है ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो आपके अंदर अगर अभिमान है तो आप ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। आप अगर अपने को ऊंचा समझते हैं तो आप ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे। तो इसलिए उसकी जो है समस्या रघुगण की यह है कि मेरा अभिमान पहले आप दूर करिए। आख्या ही कौतूहल चेत सो में, तो इसका जो है मुझे बड़ा कौतूहल है, मुझे बहुत उत्सुक है, मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि मैं राजा नहीं हूँ, ये मैं कैसे समझूँ कि हमेशा पालकी में बैठ के चलता हूँ तो मैं अपने को राजा समझता हूँ। अब मुझे आप कुछ ऐसा तत्व ज्ञान दीजिए कि जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ या मैं नीच हूँ, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी ज़्यादा नीच मैं अपने को समझूँ, तो आप ऐसा तत्व ज्ञान दीजिए। फिर श्लोक संख्या 5 से जो जड़ भरत हैं वो ज्ञान शुरू करते हैं। तो अब जो है वो तत्व ज्ञान की बात बताते हैं कि अब तुम जो है समझो कि तुम कैसे अपने को राजा समझ रहे हो, क्या राजा का तुम्हारे अंदर क्या लक्षण है, क्या है। तो वो कहते हैं, 5वें श्लोक से शुरू करते हैं, ये नवा श्लोक चल रहा है ना। तो ये तुम राजा हो ऐसा अभिमान केवल इसलिए है कि तुम पालकी में बैठे हो, अभी तो और कोई कारण नहीं है राजा कि तुम अपने को राजा समझ रहे हो, कि तुम पालकी में बैठे हो इसलिए तुमको राजा पने का अभिमान है। और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम किसी गुरु के निकट जा रहे हो, किसी महात्मा के निकट जा रहे हो, तो कोई भी सेना भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब जिस पालकी पर बैठ करके जा रहे हो तो तुम क्यों पालकी पर बैठे हो और तुम बेगार में लोगों को जो है पालकी ढोने के लिए विवश कर रहे हो? ये तुम्हारा कितना अन्याय है, तुम्हारी कितनी दुर्भावना है कि अब तुम जो है जब सामान्य व्यक्ति बनकर के ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो तो किसी को भी जो है तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि तुम किसी को अपनी पालकी में जोड़ लो? तो ये बता रहे हैं कि राजास्मि सिंधु सुति दुर्मद अंधा, कि तुम जो है दुर्मद से अंधे हो, दुर्भावना से अंधे हो, कि तुम राजा हो और किसी को पालकी में जोत लो, है ना, जबरदस्ती इसको कहते हैं बेकार में किसी से काम कराओ, किसी व्यक्ति से काम कराते हो तो धन्यवाद भी देना तो दूर की बात है, है? उसको डांटते हो, किसी से जबरदस्ती काम भी कराते हो, उसको धन्यवाद देने की बात तो बहुत दूर है, उसको डांट भी रहे हो, है ना। तो क्या कहते हैं कि यस्मिन् भवान् निजाभिमानो रूढ़ है, निजाभिमानो, तुम्हारा जो अभिमान इतना रूढ़ हो गया है, इतना परिपक्व हो गया है कि राजास्मि सिंधु सुति दुर्मद अंधा, कि मैं सिंधु देश का राजा हूँ, ये तुम्हारा जो दुर्भावना जो मद है, दुर्मद है, उसमें तुम इतने अंधे हो, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब तुम सोचो कि किस प्रकार से तुम राजा हो, किस प्रकार से तुम राजा हो। वो कहते हैं कि ये पृथ्वी है, ये जमीन है, तो जमीन पहले से सब का आधार है, जमीन सबका आधार है पहले से, जमीन के ऊपर जो है कुछ कहार हैं वो खड़े हैं, और उन कहारों के जो है देह हैं, पांव हैं, टखने, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, गर्दन और सिर के रूप में, वो भी जो है पृथ्वी का ही जो है ये शरीर है, मिट्टी का ही शरीर है, और फिर कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी है तो वो भी एक पृथ्वी का ही रूपांतर है, तो सब कुछ तो पृथ्वी है, उसके भीतर सौवीर का राजा बैठा है, राजा का शरीर भी मिट्टी का ही रूपांतर है, और उसमें चूंकि आप एक जीवात्मा हैं तो अहंकार वश अपने को राजा समझ रहे हो। तो क्या कारण है अपने को राजा समझने का कि तुम पालकी में बैठे हो, इसलिए तुम अपने को राजा समझ रहे हो। और इन विचारों को सोच्यान्यमान तुम अधिकष्ट दीनान, वो इनको कष्ट पहुंचा रहे हो, इनके ऊपर तुम्हें दया आनी चाहिए, तो तुम दया ना करके निर्दयता के साथ इनको कष्ट पहुंचा रहे हो, और तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है। जनस्य गुप्तास्मि विगत्य मानो, और तुम अपने को सोच रहे हो कि इनकी तुम रक्षक हो, तुम इनके रक्षक अपने को समझ रहे हो कि मैं राजा हूं, इनकी रक्षा कर रहा हूं। न शोक से वृद्ध सभासु धृष्टा, तुम बड़े धृष्ट हो, धृष्ट हो, तुम दुष्ट हो, वृद्ध सभा में, वृद्धों की सभा में तुम्हारी शोभा नहीं होती। यहाँ वृद्ध का मतलब जो ज्ञानी है, अनुभवी है, अनुभवों की सभा में तुम्हारी शोभा नहीं है, कोई शोभा नहीं है। तो ये बात उन्होंने बोली, और फिर उन्होंने कहा कि सब तो पृथ्वी है, सब कुछ तो पृथ्वी है, अब यहाँ तुम राजा कैसे बन गए? तो फिर वो जो है पृथ्वी तत्व पर आ गए कि पृथ्वी तत्व जो है क्या चीज है, सब कुछ पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर जो है एक हिस्सा है पृथ्वी का जिसमें तुम्हारा शरीर है, उसमें तुम एक जीवात्मा हो जिसमें तुम अपने को राजा समझ रहे हो, तो अब कहाँ कारण है कि तुम अपने को राजा समझो? तो मुख्य जो जो चर्चा है वो इसी बात पर है कि तुम अपने को राजा क्यों समझ रहे हो। लेकिन फिर भरत जो है, भरत जड़ भरत जो है, फिर इस पृथ्वी के तत्व पर आ गए कि तत्व से पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी तत्व से क्या है इस पर फिर उन्होंने जो है चर्चा की कि पृथ्वी भी जो है एक ऐसा तत्व है जो कि भगवान कृष्ण ही हैं वास्तव में। तो कृष्ण का, कृष्ण के तत्व के अलावा और कोई तत्व है ही नहीं। पृथ्वी तत्व भी अगर गहराई से देखें तो श्री कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही तत्व है, क्योंकि वो ही जो है सबके अंदर वो समाये हुए हैं और कोई उनको नहीं देख सकता है, लेकिन वही सबको धारण कर रहे हैं, वही सबके अंदर समाये हुए हैं, है ना। तो उन्होंने फिर ये बात बताई और परमाणु का जो है जो सिद्धांत है उसका भी खंडन किया, है ना। तो ये बात समझना है कि भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि उनसे सूक्ष्म कुछ नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ जो है छोटी से भी छोटी हो तो उसके अंदर भी भगवान की बहुत बड़ी रचना है। जैसे आप सोचिए कि किताब में एक छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है कभी कभी, वो बिल्कुल इतना छोटा है जैसे बिंदु होता है, बिंदु मतलब पॉइंट, आप समझ रहे। पेन को आप ऐसे रख दें कागज में, कुछ लिखते नहीं, आप ऐसे रखते हैं पेन को तो एक छोटा सा चिन्ह बन जाता है, वो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट, इतना छोटा है। तो उस इतना छोटा जो है कीड़ा किताब में कभी आपने देखा, उस कीड़े के शरीर में भी जो है भगवान की कितनी जो है विस्तृत रचना है, कितनी विस्तृत रचना है, उसके अंदर भी हृदय है और हृदय के अंदर भी जितने भी अवयव हैं सब उसके हृदय के अंदर। तो भगवान इतने छोटे से छोटे हैं कि आप उसकी गणना नहीं कर सकते कि भगवान कितने छोटे हैं। छोटी से छोटी चीज के अंदर भी जो है भगवान की बहुत बड़ी रचना है, बहुत बड़ी सृष्टि है। तो भगवान से छोटा कोई नहीं हो सकता। अभी तो वो लोग यही सोच रहे हैं, वैज्ञानिक यही बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है उससे छोटा कुछ नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसे छोटा कुछ नहीं है, परमाणु के अंदर उन्होंने देख लिया कि ये छोटे छोटे कण हैं, है ना। तभी तो उनको कुछ भी पता नहीं है कि उसके अंदर भी भगवान की कितनी बड़ी जो है संरचना है, उसके अंदर और जैसे बड़े भगवान कितने बड़े हो सकते हैं कोई इसकी सीमा नहीं, भगवान कितने बड़े हो सकते हैं, उसी तरह भगवान कितने छोटे हो सकते हैं इसकी भी सीमा आप नहीं निकाल सकते, इतने छोटे कोई सीमा नहीं है। इसलिए कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, जड़ वस्तु जो कि टूट ना सके, जिसका विभाजन ना हो सके, जिसको कि आप परमाणु कहते हैं। अभी पता चल गया कि भाई वो भी उसके अंदर भी संरचना है, अब वो कहते हैं उसके अंदर जो कण हैं उनके उनके अंदर कोई संरचना नहीं है, वो वही लास्ट है, अंतिम वही है। तो उनको पता नहीं, भगवान इतने छोटे से छोटे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितने छोटे हैं, कोई अंत नहीं है। भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, है ना। और वही भगवान है, आगे चल करके बताएंगे कि वो भगवान जो है वासुदेव हैं, जिनके अंदर और बाहर कुछ है ही नहीं, अंदर बाहर कोई अंतर नहीं है। वो ही जो है मदंती तत्वविदस तत्व यज ज्ञान अद्वयम, अद्वय ज्ञान है वो, ज्ञान स्वरूप भगवान है, हर चीज के अंदर है वो, तुमसे छोटा कुछ नहीं। वही तत्व जो है हर चीज जो है वही तत्व है, है ना। ये हमें समझना है। जैसे जीवात्मा को भी भगवान ने कहा अच्छेद्योयम, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इतना छोटा कण है जीवात्मा, ये चेतन कण है जीवात्मा, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, शरीर के अंदर है जीवात्मा। हम भी ऐसे ही इतने छोटे कण हैं, विभाजन नहीं किया जा सकता, है ना। उसी प्रकार से भगवान उसके भी अंदर और भी छोटे, कोई अंत ही नहीं। भगवान की सृष्टि छोटी छोटी चीज में भी जो है देखेंगे तो बहुत विस्तृत है, जटिल बनावट है। घास का एक छोटा सा पत्ता है तो उसमें भी अगर अध्ययन करेंगे वो लोग तो उसमें इतनी जटिल बनावट है कि घास का पत्ता भी नहीं बना पाएंगे वो। ये वैज्ञानिक लोग जो है घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते, इतनी जटिल संरचना है उसके अंदर, तो कुछ नहीं कर सकते ये लोग, है ना। तो यहाँ पर जो जड़ भरत हैं वो ये जो पृथ्वी तत्व की जो बात है वो तो इसलिए बता रहे हैं कि ये सब पृथ्वी तत्व है, इसमें तुम राजा अपने को क्यों समझ रहे हो, लेकिन फिर पृथ्वी तत्व की भी जब बात आ गई तो उन्होंने इतनी गहराई से बताई कि पृथ्वी तत्व भी आप समझो कि पृथ्वी तत्व क्या है। तो भरत महाराज जो है, जो जड़ भरत हैं, तो वो जो है उसको ज्ञान दे रहे हैं राजा रघुगण को, और उसका जो है ये सौभाग्य खुल गया और उसको इतना पहले से शिष्टाचार था कि जो महात्मा हैं हमें ज्ञान प्राप्त करना है उनसे, तो हमें विनम्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है। और वो समझ गया कि उसकी बीमारी क्या है, मेरे अंदर बीमारी है कि मैं अपने को राजा समझ रहा हूँ, मैं क्यों समझ रहा हूँ, मेरे इस अभिमान को दूर करिए। तो ये चीज़ जो है, जैसे अर्जुन के अंदर मोह है, सज्जनों के प्रति मोह है, तो वो जो है युद्ध नहीं कर सकते हैं। राजा रघुगण के अंदर वो अभिमान है, राजापने का अभिमान है, तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें अपनी बीमारी खुद समझनी होगी, हमारे अंदर क्या बीमारी है हमें खुद समझना होगा, और इस प्रकार से हमें प्रश्न करने हैं, हमें जो है ज्ञान प्राप्त करना है। तो हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। इस श्लोक पर जो विष्णुप्रिया देवी ने पद्य अनुवाद किया है उसको मैं सुना देता हूँ। इसी विधि पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, इसमें कुछ इसका रहस्य भी इतना है, इसके उपादान कारण अति सूक्ष्म परमाणु जो अंत में ये जा करके उसमें ही तो लीन हो, फिर जिनके मिल जाने से कार्य रूप की सिद्धि हो, वो भी तो अविद्यावश इस मन से ही कल्पित हो, वास्तव में उनकी भी जान लो सत्ता कोई नहीं, मन से ही वो उत्पन्न होकर हो लीन भी मन में जाकर ही। तो इस तरह से आज के श्लोक का कुछ हमने विचार किया। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? वैसे समय हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ प्रश्नोत्तर हो सकता है ना, कुछ कर सकते हैं। कृष्ण कुमार प्रभु, उस विषय को अभी हम विचार नहीं करेंगे, उस विषय पर विचार नहीं करेंगे जो प्रभुपाद ने कहा है। लेकिन जो सामान्य जो बात बताई जाती है कि भगवान हृदय में है, तो जीवात्मा के साथ हैं, जीवात्मा के साथ हैं। जैसे एक ही वृक्ष में दो पक्षी निवास करें, तो शरीर है वृक्ष है, तो शरीर एक शरीर में दो आत्माएं निवास करते हैं, है ना। तो जीवात्मा बालकिनों के 10,000 में हिस्से के बराबर है, लेकिन जो परमात्मा है वो कितने हैं, अंगूठे के पोर के बराबर हैं। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः, तो अंगूठे के पोर के बराबर हैं। और आपका जितना अंगूठा का पोर है उतने बड़े परमात्मा हैं, वो आप देख ली आपके अंगूठे का पोर कितना है। तो उनके साइज भी निश्चित नहीं है कि भाई अंगूठे का पोर इतना होता है, चींटी के अंगूठे का पोर कितना होगा, तो उसके हृदय में उतने बड़े भगवान, ठीक है ना। छोटा सा कीड़ा उसके अंगूठे का पोर कितना होगा, उस हिसाब से भगवान उसके हृदय में है। लेकिन जीवात्मा जो है इतना छोटा है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन परमात्मा हृदय में है जीव के साथ में, इतने बड़े हैं, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।